समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुदिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुदिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एंड डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने के करीब, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली।
एपी स्टॉलवर्ट्स अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, तरविंदर सिंह मारवा, सतीश उपाध्याय, कपिल मिश्रा को अजेय बढ़त।
बीजेपी विन्स इन द बाय इलेक्शंस इन मिल्कीपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन उत्तर प्रदेश, वाइल डीएमके अहेड इन इरोड ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन तमिलनाडु।
बांग्लादेश के गाजीपुर में पूर्व मंत्री मुजम्मिल हक के निवास पर तोड़फोड़ के प्रयास के दौरान हिंसक झड़प हुई।
एंड इन इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टुडे, हैदराबाद टू क्लैश विद मोहम्मदन एससी इन हैदराबाद, वाइल ईस्ट बंगाल टू लॉक हॉर्न्स विद चेन्नई इन कोलकाता।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणामों की। भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, उसने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम की ताजा स्थिति के अनुसार अभी तक 57 नतीजे घोषित हुए हैं। भाजपा ने 40 सीटें जीती हैं और 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अभी तक 17 सीटें मिली हैं और 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे हैं। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता भानु प्रताप के पास। नमस्कार भानु
जी। नमस्कार मधुता।
तो भानु, क्या आपके पास है ताजा अपडेट दिल्ली चुनाव विधानसभा के चुनाव परिणामों के बारे में?
जी मधुता, दिल्ली विधानसभा चुनावों की मतगणना अब अपने अंतिम दौर में है। नतीजे अब लगभग स्पष्ट हो गए हैं और एकदम साफ है कि भाजपा का 27 साल का राजनीतिक वनवास आज समाप्त हो रहा है जी। और वो दिल्ली में मजबूत तरीके से सरकार बनाने जा रही है। और कांग्रेस ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया और वो लगातार तीसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता खोल पाने में नाकामयाब रही है। अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी, जो 2013 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, उसे इस चुनाव में करारा झटका लगा है। पिछली बार मुकाबले में पार्टी को लगभग 40 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से और मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा मुदिता, बात करें दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार गए हैं। 2015 में 67 और पिछले विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी के लिए आज नतीजे एकदम चौंकाने वाले रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं में जीत का उत्साह देखते ही बन रहा है। मुदिता, ढोल बज रहे हैं, कार्यकर्ता नाच भी रहे हैं और मिठाइयां भी बांटी जा रही है। उसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने शानदार प्रदर्शन पर कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया है। मुदिता
जी, बहुत धन्यवाद भानु आपका।
Yes, and now it's time to for a segment, the Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Solar Energy and Waves Hackathon.
हमें ये तय करना होगा अभिषेक कि हमें कैसी दुनिया में रहना चाहते हैं जो स्वच्छ, खुशहाल और स्वस्थ हो और हर कोई इसका हकदार हो।
Yes, absolutely. And Thomas Edison very famously said, "I'd put my money on the sun and the solar energy. What a source of power. I hope we don't have to wait until oil and coal run out before we tackle that. So now the question that arises, Mudita, is what is solar energy? Well, solar energy is the energy that comes from the sun, which is captured and converted into electricity and heat. It is a renewable energy source that can be used for many purposes, including generating electricity, heating water, and desalinating water.
जी बिल्कुल सही अभिषेक. और अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2050 तक सौर ऊर्जा जो है वो दुनिया की आधी से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकती है. ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सबूत हम सबके सामने मौजूद है. सौर ऊर्जा की लागत लगातार कम हो रही है और तकनीक अद्भुत गति से पहले से बेहतर हो रही है.
एब्सोल्युटली. एंड स्पीकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, लेट्स डेल्व इनटू द एक्साइटिंग इनोवेशंस हैपनिंग इन सोलर पैनल एफिशिएंसी. You know, those regular solar panels, well, they're good, but scientists are making them even better. Traditional panels have an efficiency rate of around 70 to 20%, but new technologies are blowing those numbers away.
जी हाँ, हम द्विभाजित पैनलों के बारे में बात कर रहे हैं जो दोनों तरफ से सूर्य के प्रकाश को पकड़ते हैं. ये मल्टी जंक्शन सेल हैं जो सूर्य के प्रकाश के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को पकड़ने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं. और इतना ही नहीं, ये पैनल पहले की अपेक्षा 45% तक अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि वे अभी थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन इनकी क्षमता अविश्वसनीय है और इनमें निरंतर विकास हो रहा है.
एग्जैक्टली मुदिता. नाउ लेट्स टर्न अटेंशन टू इंडिया. I'm excited to share with our listeners that our nation has crossed a historic milestone by surpassing 100 gigawatt of installed solar power capacity. Can you believe that? Well, this is huge. It really reinforces our position as a global leader in renewable energy.
बिल्कुल सही अभिषेक. और हम 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा के 500 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर अग्रसर हैं. और इस राह में हमारा विकास आश्चर्यजनक रहा है. पिछले एक दशक में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 3,450% की भारी वृद्धि हुई है.
Yes, and solar isn't just growing overall, it's becoming the dominant player within the renewable energy sector in India. It now accounts for nearly half of our total installed renewable capacity. In 2024 alone, we added a record-breaking 24.5 gigawatt of solar capacity.
और लेकिन ये सिर्फ बड़े सोलर फार्म ही नहीं है अभिषेक. हमारे देश में जो रूफटॉप सोलर है वो भी अविश्वसनीय उड़ान भर रहा है. खासकर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का इसमें बहुत बड़ा योगदान है. भारत सरकार की ये पहल पूरे देश में घरों के लिए रूफटॉप सोलर को सुलभ बना रही है. और यहाँ हम अपना व्यक्तिगत अनुभव भी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे कि आपकी बिजली की खपत और बिजली के बिल को भी ये बहुत हद तक कम कर देता है. क्योंकि आप अपने घर में जब सोलर पैनल लगाते हैं तो आप वहीं पर बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, वही बिजली आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके लिए बिजली का बिल बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है. तो भारत सरकार की ये जो पहल है ये पूरे देश में घरों के लिए रूफटॉप सोलर को सुलभ बना रही है. पिछले वर्ष फरवरी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया गया था. और इस योजना के तहत 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है. और साथ ही सरकार की ओर से अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है.
Yes, absolutely, Mudita. And this reduces the burden of installing solar panels. And the government provides subsidy of Rs. 30,000 on panels up to 2 kilowatts, Rs. 48,000 on panels of 3 kilowatts and Rs. 78,000 on panels above 3 kilowatts. So if you want to apply online, then you can visit the official website pmsuryaghar.gov.in and you can register with the complete information. And not only this, India is also making strides in solar manufacturing. A module production capacity has surged from a mere 2 gigawatts in 2014 to an impressive 60 gigawatts in 2024. And we are becoming a global leader in this field. So as the golden ray from the heavens high, a boundless source that paints the sky, solar energy, a radiant might, powering a world with pure sunlight. So now let's dive into a second dateline of the day, topic of the day, Mudita, that is the Waves Hackathon. The Minister of Information and Broadcasting, in partnership with the India Cellular and Electronics Association, ICEA, has launched the Truth Tell Hackathon Challenge.
जी हाँ, ये पहल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहले सीजन का हिस्सा है. और इसका उद्घाटन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 कार्यक्रम के दौरान हुआ है.
मेनी यंगस्टर्स आर कम्पीटिंग टू गिव द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द कॉमन इश्यूज रिलेटिंग टू वेरियस सेक्टर्स लाइक हेल्थ स्पेस एंड टूरिज्म टू द ऑन गोइंग एक्सटेंडेड रियलिटी क्रिएटर हैकाथॉन एंड अबाउट 40 कंटेस्टेंट्स विद प्रोटोटाइप्स पर्टेनिंग टू वेरियस सेक्टर्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल्स ऑफ द XR क्रिएटर हैकाथॉन. A report from a correspondent of the hackathon, Delhi Meet, upheld at Noida today.
The Delong XR Creator Hackathon Delhi Meetup has been held at Noida today to create awareness among students and young working professionals about unlimited opportunities to pursue their careers and available employment opportunities in the upcoming technologies like extended reality. Over 2,200 young professionals, developers and enthusiasts have initially participated in the XR Creator Hackathon. About 40 participants have been shortlisted for finals and they are all now working on various issues pertaining to sectors like health, space, tourism, e-commerce and many others. Shagnik Chakravarti, who is working on a prototype on a space-related issue, says he and his team are optimistic that their solutions will bring them more opportunities.
तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम चंद्रवीर है. आवर टीम नेम इज ब्रह्मांड. आवर प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ चंद्रयान 3 सिमुलेशन इन VR. आई बिलीव चंद्रयान लाइक प्रोजेक्ट्स लाइक चंद्रयान दैट आर डन बाय आवर इसरो आर रियली ग्रेट बट देयर इज वन प्रॉब्लम व्हिच इज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक. अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट बट नॉट एवरीवन. इंडियाज people in India who know about India's space missions compared to the global average is quite low. So what we want to bring with this project is we want to bring a more entertaining and engaging kind of content which will be delivered to more people in a more interesting way.
Punya Garg, who is working on a solution relating to virtual reality, said many people cannot actually go and participate in events like Mahakumbh, but they can take the experience virtually. Her team is working on such solutions.
And basically, I was a part of Creator XD Hackathon, and this is phase 3. So basically, my project was about tourism and जैसे specially recently जैसे महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में and a lot of us हम लोग जा नहीं पाए थे. That is where my project was mainly focused on to help people experience that without actually going that क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है, you know, हर कोई नहीं जा सकता because of whatever reasons. So that is like where my main project was and मेरी team का यही main motive था कि हम लोग आपको प्रयागराज और महाकुंभ experience करवा पाए without actually going there.
Ashutosh of Wave Labs, organized partner of the event, said the XR Creator Hackathon is a challenge that is focused on an augmented and virtual reality.
We are an augmented reality, virtual reality technology company. We have been collaborated with the Ministry of Information Broadcasting to support the initiative of Waves. And under Waves, we are handling XR Creator Hackathon. So XR Creator Hackathon is a challenge that is completely focused to augmented reality and virtual reality technologies. And we have partnered with some community which includes XDG and Bharat XR.
Designed to spark creativity and drive innovation, the XR Creator Hackathon provides a platform for showcasing groundbreaking solutions that can transform how we interact with technology. With Ashano, Lakshmi for Parikrama.
So with that, it's a wrap on today's Dateline segment. Stay curious, stay inspired, and never stop looking up, because the sun always has a new story to tell us.
और अब समय है राज्यों की परिक्रमा का, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास. तो अभिषेक, ये बताइए कि न्यूज रूम हो या घर, पानी के अलावा दूसरा कौन सा बेवरेज है जिसके बिना आप रह नहीं सकते?
वेल, समर्स विल बी सून अपॉन अस मुदिता
जी,
एंड ड्यूरिंग द समर्स आई लाइक टू कंज्यूम समथिंग कूल लाइक लस्सी, कार्ड, कोकोनट वाटर, जूसेस, मोस्टली वाटरमेलन जूसेस. सो बेसिकली कूल स्टाफ दैट हेल्प्स मी बीट द हिट. And in winters, it's just the opposite. I consume lots of coffee, tea, mostly warm beverages.
और कहते हैं कि दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला जो पदार्थ है वो है चाय. और हम हिंदुस्तानियों के लिए तो चाय केवल चाय नहीं है, एक इमोशन है कहना चाहिए. चाहे थकान मिटानी हो, दोस्तों के साथ गप्पे मारनी हो, या फिर सुबह उठने के बाद नींद खोलनी हो, उसके लिए चाय ही पीना लोग पसंद करते हैं. तरह तरह की चाय है, कोई दूध वाली चाय पीता है तो किसी को ग्रीन टी भाती है. चाय पीने के कप या ग्लास भी जो होते हैं वो तरह तरह के होते हैं. आमतौर पर कांच के ग्लास और चीनी मिट्टी के कप में हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन चौराहों, रास्तों पर या ट्रेन में मिलने वाली चाय जो होती है वो अक्सर मिट्टी के कुल्हड़ या फिर कागज़ के कप आपने देखे होंगे, जिन्हें बाद में फेंक दिया जाता है. लेकिन छत्रपति संभाजी नगर की एक महिला उद्यमी ने चाय कॉफी पीने के लिए एक ऐसे कप बनाए हैं जिसे चाय पीने के बाद खाया जा सकता है. तो ज्यादा ब्यौरे के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता हर्षवर्धन दीक्षित के पास.
छत्रपति संभाजी नगर में हाल ही में संपन्न हुई एक प्रदर्शनी में चाय की एक गुमटी पर लोगों की भारी भीड़ हो रही थी. वहां मिलने वाली चाय बढ़िया तो थी ही, लेकिन चाय के ग्लास कुछ खास थे. चाय खत्म होने पर खाली कप लोग खा रहे थे. यही बात और लोगों को भी आकर्षित कर रही थी. जिले के आड़गांव खुर्द के राम रहीम सेल्फ हेल्प ग्रुप की हीना शेख और उनकी साथियों ने ये कप बनाए हैं. अपने इस अनूठे कप के बारे में हीना शेख ने और अधिक जानकारी दी.
हमारा कट है गाँव में, एक गट में 10 महिलाएं, और उसमें से हमने क्या करे, पहले से मसाले का उद्योग चालू करे और फिर अच्छा चलने लगा. तो फिर उसके बाद हमको कप की आइडिया आई, चाय पीने की और कप खा लेने का ऐसी आइडिया आई, और उसमें से हमने फिर वो कप की तैयारी शुरू करे. कप में जो मटेरियल है, गेहूं है, मक्का है और मैदा है, शक्कर है उसके अंदर. उसके अंदर इलायची फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला, ऐसे अलग अलग फ्लेवर के कप बनाते हम. एक मशीन है तो उसके अंदर पहले आटा डाल के अपन रोटी बनाने के लिए बनाते क्या वैसा आटा बनाते, और फिर उसको मशीन में डालते. मशीन में से फिर पूरी तरह से ड्राई होकर कप बाहर आ जाते, और उसकी पैकिंग पटनी उसको लेबल होकर फिर हम सेल करते. डालना संभाजी नगर ऐसे दूर दूर चालू है, होटल में इसमें ज्यादा चालू है. और उसकी वजह से कैसा है, कचरा भी नहीं होता और आप लोग को कुछ उससे बीमारी भी नहीं होती ना. समझो दूसरे कप है जो, इसकी वजह से आप लोग को कैंसर होने का धोखा है. ये कप कैसा है, चाय पी लेने के और कप खा लेने का, तो फिर इससे कुछ आप लोग को नुकसान नहीं है और कचरा भी नहीं होता उसकी वजह से. उसकी वजह से सब लोग ऐसा रिस्पॉन्स अच्छा है. इसका महीने में 15,000-16,000 रुपए आप लोग रहते हैं अंदर.
राम रहीम ग्रुप की इस पहल का अनुकरण किया जाए तो किसी बीमारी की संभावना नहीं होगी, और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन को सहायता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं. परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजी नगर से हर्षवर्धन दीक्षित.
Well, Mizoram has the second highest literacy rate in the country, and in those days people used to gather information and gain knowledge through reading books. Today, with massive technological innovation, the youth and students of Mizoram are also no exception to gathering information on social media such as YouTube, Facebook, WhatsApp and Instagram. Despite technological advancement, a group of people are taking efforts in promoting reading books in the state of Mizoram. Let's hear more.
In an age where technology has become an easier tool for the younger generations, causing students and youth to read news and other things from social media such as YouTube, Facebook, WhatsApp and Instagram, In Lekha in Mizoram is promoting to read books, which is the primary source of information for generations. With the aim of promoting reading habits of young students and youth in the face of massive technological invasion, In Lekha was founded in 2018 and launched for the public in 2022. In response to the initiatives taken up by In Lekha, which is a book cafe, many people has now started back the habit of reading books. Speaking to Akashvani Aizol, Anita VL Nunmoy says that students have enrolled in her book cafe, which gives us a ray of hope in cultivating the habit of reading books.
So far we have published 10 books till date, and In Lekha is a publishing house, and we also have a book cafe at Talkang Aizol. In Lekha has two meanings, it's your book and paper house. So at In Lekha we publish books, and we also organize events like discussion and meetups such as poetry readings, mental health discussion, and we also organize seminars and workshops relating to creative works and literatures and mental health.
The initiative taken up by In Lekha will go a long way in paving the way for younger generations to read books of their choice. In Lekha also publishes books towards attending the goal of reading books, while many people are now depending on WhatsApp University. The importance of reading books needs no further emphasis. With Ging Gangte, this is Isaac from Akashvani Aizol for Parikrama.
Or नॉर्थ ईस्ट से अब हम चलते हैं पश्चिमी प्रदेश गुजरात में, जहां का कच्छ जिला न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है बल्कि जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य से भी बहुत समृद्ध है। कच्छ के गुनेरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव क्षेत्र को गुजरात की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी से सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
देश के पश्चिमी भाग में स्थित कच्छ जिले के गुनेरी गांव में 32 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैले इनलैंड मैंग्रोव क्षेत्र को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के तहत गुजरात बायोडायवर्सिटी बोर्ड की ओर से जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस साइट को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करने से प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेमियों में खुशी छा गई है। सामान्यतः मैंग्रोव समुद्र तट के किनारे जहां पानी का निरंतर प्रवाह रहता हो वहां या जहां लगातार कीचड़ रहता हो वहां पाए जाते हैं, लेकिन यह जगह अरब सागर से 45 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा कोरी क्रीक भी यहां से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। गुनेरी के इस मैंग्रोव क्षेत्र में कभी पानी नहीं आता और न ही यहां कीचड़ या दलदल दिखता है। इस तरह समुद्र तट न होने के बावजूद मैंग्रोव यहां 32.78 हेक्टेयर समतल भू क्षेत्र पर जंगल की तरह फैले हुए है, जो इसकी विशिष्टता है, जिसे इनलैंड मैंग्रोव के नाम से जाना जाता है। विश्व में केवल 8 इनलैंड मैंग्रोव स्थल है, जिनमें से भारत में एकमात्र यह गुनेरी है। गुजरात जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सुगुर ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाली पीढ़ी को इस अनोखी जगह के बारे में जानकारी मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार ने यह कदम उठाया है।
एक अनोखी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये पानी जो दूसरा जो झाड़ है ना, ये जैसे जमीन से लेता है, ये मैंग्रोव जो है ये जमीन से पानी लेगा, ये समुद्र की पानी नहीं, जमीन के अंदर से पानी लेता। इसलिए भविष्य में जो जनरेशन आएगा उनको ये ख्याल हो, इनको भी पता लगे कि भाई इस तरह भी मैंग्रोव जंगल रहेगा बोल के हमने डिसाइड किया है।
यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के कारण भी महत्वपूर्ण है। श्री सुगुर ने कहा कि इसके लिए मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा और स्थानीय लोगों को क्षमता वर्धन प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। कच्छ की खाड़ी पर स्थित कच्छ का रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े खारे और आर्द्र क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र का जैव भूगोल अद्वितीय है, क्योंकि यह एक तरफ से अरब सागर और वहीं दूसरी ओर थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। भारत में एकमात्र इनलैंड मैंग्रोव की मौजूदगी कच्छ के पारिस्थितिकी महत्व को और बढ़ा देती है। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।
और खेल के मैदान की हलचल में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज हैदराबाद में हैदराबाद एफसी का मुकाबला मोहम्मदन एफसी से होगा। मैच शाम 5 बजे शुरू होगा और कोलकाता में एक अन्य मैच में ईस्ट बंगाल और चेन्नईयन एफसी आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।
Yes, and now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember educationist and former president of India, Zakir Hussain, who was born on February 8, 1897 in Hyderabad. On Mahatma Gandhi's appeal, Zakir Hussain helped found the Muslim National University in Aligarh, which was later moved to New Delhi as Jamia Millia Islamia University, and served as its vice-chancellor from 1926 to 1948. The institution was intimately involved with India's struggle for freedom from the British rule and experimented with value-based education on the lines advocated by Mahatma Gandhi and Hakim Ajmal Khan. At Gandhi's invitation, he also became the chairman of the National Committee on Basic Education, established in 1937 to design a Gandhian syllabus for schools.
After independence, Hussain became the vice-chancellor of Aligarh Muslim University in 1948. He was appointed governor of Bihar state in 1957, elected vice president of India in 1962, and was elected the third president of India in 1967. Zakir Hussain died on 3rd May 1969, the first Indian president to die in office.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्म दिवस। श्रोताओं कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जीवन का दर्शन कह लीजिए या जीवन की सच्चाई, इन दो लाइनों में बयां कर देने वाले उर्दू और हिंदी के अजीम शायर निदा फाजली साहब की आज पुण्यतिथि है। वैसे तो वे गीतकार, संवाद लेखक और पत्रकार भी थे। रजिया सुल्तान, आहिस्ता आहिस्ता, सरफरोश, सुर जैसी कुछ फिल्मों के गीत भी लिखे, गद्य भी लिखा, लेकिन मूल रूप से वे शायर ही थे और उनकी शायरी वक्त के कागज पर कुछ इस तरह वाबस्ता है कि सदियां भी इसे धुंधला नहीं कर पाएंगी। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली को शायरी अपने पिता से विरासत में मिली थी। असल नाम उनका मुक्तदा हसन था, निदा फाजली उनके लेखन का नाम था। और दिलचस्प बात यह है श्रोताओं कि निदा फाजली साहब ने सूरदास के एक पद से प्रभावित होकर शायर बनने का फैसला किया था। 1998 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया। 2016 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया। और ये कैसा संयोग है अभिषेक की निदा फाजली की गजलों को अपनी आवाज से लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचाने वाले मशहूर गायक जगजीत सिंह के जयंती के दिन ही निदा फाजली साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो क्यों ना हम निदा फाजली साहब के लिखे हुए दोहे जगजीत सिंह जी की आवाज में सुन लें। तो हम चलते हैं जगजीत सिंह जी की तरफ। आज जयंती है गजलों की दुनिया के बेताज बादशाह जगजीत सिंह की। अभिषेक, हिंदुस्तान की कई पीढ़ियों का गजल से जो पहला परिचय है वो जगजीत सिंह है, और उन्हें सुन के हमारे जैसे कई लोगों ने गजल सुनना शुरू किया था। और यही जगजीत सिंह की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने गजल को आम लोगों तक पहुंचाया।
Yes, he composed and sang in numerous languages and is credited for the revival and popularity of the ghazal, an Indian classical art form, by choosing poetry relevant to the masses and composing them in a way that emphasized the meaning of the words and melody evoked by them. In terms of Indian classical music, his style of composing of the gayaki is considered as bol pradhan, one that lays emphasis on words, and with a career spanning 5 decades and many albums, the range and breadth of his work has been regarded as genre-defining.
1941 में आज ही के दिन राजस्थान के श्री गंगानगर में उनका जन्म हुआ था। और अभिषेक, उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन जगजीत पर गायक बनने की धुन सवार थी। और सोचिए, अगर वो बन गए होते आईएएस ऑफिसर तो ये हिंदुस्तान के संगीत प्रेमियों का कितना बड़ा नुकसान होता है इसमें। उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा था पंडित छगनलाल शर्मा से, और बाद में उस्ताद जमाल खां साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। 80 के दशक में फिल्मों में उनको सफलता मिली। उनका 75 में एल्बम आया था अनफॉरगेटेबल्स, और यहाँ से जो कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ उसने उन्हें वाकई अनफॉरगेटेबल यानी अविस्मरणीय ही बना दिया। और एक चीज जो उनकी जरूर बात हमें करनी चाहिए कि गायकी के साथ उनका सिलेक्शन ऑफ गजल्स जो था वो बड़े कमाल का है। उन्होंने वो कलाम चुने जिनमें उर्दू के भारी भरकम शब्द तो नहीं थे लेकिन भावनाओं की गहराई थी। तो क्यों ना सुने हम इस मशहूर गीत को जिससे हर कोई कनेक्ट कर पाता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो।
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती।
2003 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया और 2014 में उनके सम्मान में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए। 10 अक्टूबर 2011 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले।
Yes, and Raymond Scott, born Harry Warno, passed away in 1994. He was an American composer, band leader, pianist, record producer and inventor of electronic instruments. Known best in his time as a composer of production music, Scott is today regarded as an early electronica pioneer. Let's listen into his track, Powerhouse.
और ठुमरी क्वीन के नाम से मशहूर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शोभा गुर्टू की आज जयंती है, बल्कि उनकी जन्म शताब्दी है। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं शोभा जी की गाई मशहूर ठुमरी के साथ में। इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। नमस्कार, नमस्कार।
मारे